और आप ज़रा ये अंदाज़ा करें कि इस कायनात में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई और ना है ना हो सकता है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, उलूमुल अव्वलीन वल आखिरीन सब जमा फरमाए गए नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। उनको ये फरमाया जा रहा है कि ये दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा करते रहिए। और ये इससे पहले जो आयत करीमा जो जिस तरह है, इससे पहले जो अल्फाज हैं, फ़तआला मलिकुल हक वला ताजल बिल कुरआन मिन कबली अन युक्ज़ा इलैका वहयू, ऐसे ही है, मिन कबली अन युक्ज़ा इलैका वहयू वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो एक तरफ तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत को शुरू किया है अपनी बरतरी जाहिर करने के लिए, फ़तआला अल्लाहु मलिकुल हक, बड़ी ऊंची शान है जिसकी सल्तनत ही बरहक है, उसकी शान जिसकी सल्तनत ही बरहक है। तो इस शान बयान करने के बाद फरमाया कि वला ताजल बिल कुरआन मिन कबली अन युक्ज़ा इलैका वहयू। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम वही लेकर आते थे तो बाज़ात कुरान करीम की तवील तवील आयतें होती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इस ख्याल से कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, वो अल्फाज दोहराते रहते थे जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। उस पर उसकी वजह से आप पर बोझ भी ज़्यादा पड़ता था कि एक तरफ सुन रहे हैं भाई को, दूसरी तरफ उसको याद फरमा रहे हैं, दिल में दोहरा रहे हैं, बोझ पड़ता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके वजह से ये फरमाया कि तुम ये जो कुरान नाजिल होता है तो जल्दी जल्दी मत पढ़ा करो जब तक कि वही पूरी नाजिल ना हो जाए। और साथ ये फरमाया कि ये कहा करो कि रब ज़िदनी इल्मा, यानी आराम से सुनो और जब पूरी वही मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह से ही मांगो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। तो ये दुआ करने की आपने अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन फरमाई। सूरह क़यामा में भी इस बात का जिक्र आया है और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इत्मीनान दिला दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इत्मीनान ये दिला दिया है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह इन अलैना जमअहू व कुरआना। आप ये अपनी ज़बान को हरकत न दिया करें जल्दी से याद करने की खातिर, क्यों? इसलिए कि इन अलैना जमअहू व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है कि वो आपको याद कराएंगे और हम ही आपको पढ़वाएंगे, फिर उसकी तशरीह भी हम करेंगे, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तो इन सब बातों से आप बेफिक्र होकर वही सुन लिया करें, आप इधर सुनेंगे उधर आपको याद हो जाएगी, उसके पढ़ने का तरीका आ जाएगा और उसके जो मफहूम है उसकी जो तशरीहात हैं वो भी हम आपके कल्ब मुबारक में डाल देंगे। लिहाजा न वही को वसूल करते वक्त न ये फिक्र कीजिए कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, न ये फिक्र कीजिए कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा और न ये फिक्र कीजिए कि इसके क्या क्या मानी होंगे, इसमें क्या क्या उलूम होंगे। इस फिक्र में पढ़िएगा नहीं, बस आप सुनते रहिए, जब आप वही नाजिल हो जाएगी तो ये सारे काम हमने अपने ज़िम्मे ले लिए। लेकिन साथ ही ये फरमाया कि अगरचे जिम्मे तो ले लिए लेकिन फिर भी आप अल्लाह तबारक व तआला से इल्म में ज्यादती की दुआ करते रहें कि मैं अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, जो कुछ आपने दे दिया उस पर आपका शुक्र, लेकिन जो नहीं है अभी तक तो वो इल्म भी मुझे अता फरमाते रहिए, उसमें ज्यादती करते रहिए। इससे मालूम हुआ कि इल्म जो है वो एक नापैदा किनार समंदर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब जब नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आलमुल खल्क सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, उनको भी ये कहा जा रहा है कि अपने इल्म में इजाफा करते रहिए, ये दुआ करते रहिए कि मेरे इल्म में इजाफा हो। चुनाचे ये दुआ ऐसी है कि अगर किसी का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो तो वो हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए दुआ करे, और अगर किसी के को इल्म का हासिल करने में दुश्वारी हो रही है तो उस दुश्वारी को दूर करने के लिए दुआ करे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दीजिए। तो दोनों बातें जो हैं वो इंशाल्लाह दोनों मकासद इससे हासिल होंगे। लेकिन जो असल सबक मिल रहा है इस आयत करीमा से, अल्लाह ताला क्यों नकल फरमा रहे हैं ये बात कि हमने अपने पैगंबर से ये कहा था कि तुम इल्म में ज्यादती की दुआ किया करो, क्यों फरमा रहे हैं ये? कोई महज वाकया बयान करना है, महज किस्सा बयान करना है, या इससे हम लोगों को कोई सबक देना है? जाहिर बात है कि महज किस्सा बयान करना तो कुरान करीम का मनसब नहीं, उसका वजीफा नहीं कि वह किस्सा बयान करके खामोश हो जाए। यकीनन उसका मकसद है हम लोगों को सबक देना। क्या सबक देना? कि जब तक तुम जिंदा हो आखिरी सांस तक तुम्हें तालिबे इल्म रहना है, इल्म की तलब तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए जिंदगी में हर लम्हे पर, हर कदम पर, यहां तक के मरते दम तक। और ये इल्म की तलब, ये तालिबे इल्म जो लफ्ज इस्तेमाल होता है आमतौर से उन लोगों के लिए होता है कि जो बाकायदा किसी दरसगाह में दाखिल होकर तालीम हासिल कर रहे हों, उनको कहते हैं तालिबे इल्म आमतौर से। लेकिन हकीकत में तालिबे इल्म हर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो बाज़ाब्ता किसी दरसगाह में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, कुछ और भी कर रहा हो, किसी और मशगले से वाबस्ता हो, लेकिन इल्म की उसको ज़रूरत है। और इल्म ही दरहकीकत उसको बिलआखिर हासिल कर करके उसको नजात हासिल करनी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ताजिर है तो, मुलाजिम है तो, मुदर्रिस है तो, काश्कार है तो, घर बार चलाने वाला है या चलाने वाली है तो उसको हर वक्त इल्म की तलब होनी चाहिए। यह पैगाम दिया जा रहा है कि यह इल्म की तलब कभी खत्म ना होनी चाहिए। अब सबसे पहले जो तलब इल्म हर इंसान के जिम्मे फर्ज ऐन है, इस तरह फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, जैसे हज फर्ज है, इसी तरह इल्म हासिल करना भी हर इंसान के जिम्मे फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो उससे मुराद ये नहीं है कि पूरे 8 साल का कोर्स करना ज़रूरी है हर मुसलमान को, बल्कि मकसद ये है कि जितना इल्म उसको दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है उसका इल्म हासिल होना उसके ज़िम्मे फ़र्ज है, उसका हासिल करना उसके ज़िम्मे फ़र्ज है। अब देखो कि इसका मतलब क्या निकला कि आदमी को, हर मुसलमान को, بغیر کسی استثناء کے اس کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیا علم ہے نماز کا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، کتنے واجبات ہیں کہ اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں تو سجدہ صاحب سے تلافی ہو جاتی ہے، کتنی سنتیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر چھوٹ گئیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، کتنے مستحبات ہیں جو کریں تو ثواب ہے نہ کریں تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. نماز ان سب پر مشتمل ہے، کچھ اس سے فرض ہیں، کچھ اس سے واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ساری تفصیلات معلوم ہوں کہ فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں. ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے. کیونکہ یہ علم نہیں ہے اس واسطے بعض اوقات نماز نہیں ہوئی اور سمجھ رہے ہیں کہ ہو گئی، بعض مرتبہ نماز ہو گئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی، بعض مرتبہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا لیکن پتہ نہیں کہ بھائی واجب تھا یہاں پر بغیر سجدہ صاحب کے نماز پڑھ لی. بس ایک روٹین ہے جو چلی جا رہی ہے، جس طرح کھڑے ہو گئے بس پوری نماز پڑھ لی، کچھ اس کی تفصیلات کا علم نہیں. حالانکہ یہ اس علم میں داخل ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میں سبحان ربی العظیم پڑھنا بھول گیا، رکوع میں نے سبحان ربی العلیٰ پڑھ دیا تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب مجھے شک ہو گیا تھا کہ میں نے جو ہے اتحیات میں نے پڑھنا شروع کر دیا اس میں رکوع میں یا سجدے میں، تو میں سمجھا کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو میں سجدہ صاحب کر لیا میں نے. غرض دن رات اس قسم کے مسائل لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. جب نماز کا یہ حال ہے تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کس مقدار میں ہوتی ہے، کیسے اس کا حساب لگایا جاتا ہے، یہ دیتا ہے بس ایک اندازے سے نکال دیا بس زکوٰۃ. عام طور سے یہ بات عام ہے لوگوں میں کہ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن کس طرح نکالنی چاہیے، اس کا حساب کیسے کرنا چاہیے، اس کا نہ پتہ ہے نہ فکر ہے. بس ایک اندازے سے کہ بھائی اتنی ہو گئی ہوگی چلو نکال دو. کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے یہ نہیں پتہ. تو بعض اوقات ایسے کو دے دیتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ایسی جگہ دے دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ لگنی نہیں چاہیے. اب یہ مسائل وہ ہیں کہ جو جن کو جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے. ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، حلال ہے، کون سی جائز نہیں ہے. جب میں خرید و فروخت کروں تو اس میں کیا احکام مجھے مد نظر رکھنے چاہیے. بس ایک چل رہا ہے قافلہ چل رہا ہے تجارت کا، اس میں جس طرح چاہا اس کو استعمال کر وہ بیچ دیا خرید لیا. یہ فکر کہ یہ خریداری یہ بیچنا یہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کا پتہ نہیں. تو یہ وہ علم ہے جس شعبے میں انسان کام کرتا ہو اس شعبے کی معلومات، ضروری معلومات جو حلال و حرام سے متعلق ہیں وہ اس کو ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو इसका मतलब यह कि उसने फर्ज ऐन पूरा नहीं किया। अच्छे खासे बड़े बड़े नेक लोग सफ़े अव्वल के पाबंद, लेकिन मामलात में जो शरीयत ने आकाम दिए हैं उनका पता नहीं। अभी आजकल मेरे पास एक झगड़ा आया हुआ है, अरबपति लोग हैं, दीनदार हैं, बुजुर्गों की सोबत में बैठने वाले, और अचानक एक झगड़ा खड़ा हो गया कारोबार के अंदर। उस कारोबार में क्या हुआ कि शुरू से इस तरह चल रहा है कि सब गड़मड़ है, कोई बात बाजी नहीं की, और शरीयत के मुताबिक जिस तरह कारोबार को इब्तिदा करने चाहिए थी वो नहीं किया, नतीजा एक झगड़ा है। ये एक नहीं, सैकड़ों मिसालें इस किस्म की मौजूद हैं। तो एक तो इल्म का वो हिस्सा है जो फर्ज ऐन है, दूसरा जो है ये जो कहा जा रहा है कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए, ये असल में कुछ जहन यूं जाता है वल्लाहु आलम कि फर्ज ऐन के बाद इजाफे का जिक्र है ना, मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए, जिसका मतलब यह कि जो फर्ज ऐन है वो तो हासिल है पहले से, अब उसके बाद और मांगा जा रहा है और दीजिए। ये तलब इल्म जो है ये मरते दम तक जारी रहनी चाहिए कि आदमी को के दिल में ये तड़प हो कि हर वक्त मैं मेरे इल्म में कुछ इजाफा हो। जब ये तलब लग जाती है तो फिर इंसान को चैन नहीं आता। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, वो हमसे पूछा करते हैं कि बताओ तालिब इल्म की तारीफ क्या है। तो हम ऐसे जो माना ज़ाहिरी हैं बता दी कि इल्म, कहा कि मेरे नज़दीक तालिब इल्म की तारीफ यह है कि वो शख्स कि जिसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई मसला चक्कर काट रहा हो, वो है तालिब इल्म। कि मैं फलां काम कर रहा हूँ वो दुरुस्त हो रहा है नहीं हो रहा, वो अल्लाह ताला को राज़ी करेगा या नाराज़ करेगा, बहलाल होगा या हराम होगा। और अगर ये सूरत हाल पेश आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, जिसके दिमाग में हर वक्त ये तलब मौजूद हो कि मुझे बना चक्कर काट रहा हो, उसके दिल में एक सवाल को ना कोई चक्कर काट रहा हो, ये तलब इल्म है जिसको कहा जाता है मिनल महदी इला लहद, कि जो बचपन के जो बचपन का जो झूला होता है बच्चों का उससे लेकर लहद तक यानी कब्र तक जाती है, आखिर वक्त तक वो आदमी को यह तलब रहनी चाहिए। हमारे हज़रत वाला हज़रत डॉक्टर आरिफी साहब, डॉक्टर बिलाही साहब आरिफी कद्दस अल्लाह ताला सिर्रह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो बाकायदा दरस निज़ामी नहीं पढ़ा था उन्होंने, लेकिन हमेशा अपने आप को तालिब इल्म फरमाते थे, तालिब इल्म तालिब मैं तालिब इल्म हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि मैं अल्लाह ताला के भरोसे पर कहता हूँ कि सारे दुनिया के उकला अकलमंद लोग वो जमा होकर आ जाएं और शरीयत के किसी भी मसले पर कोई इश्काल पेश करें तो ये बंदा दो मिनट में उनको लाजवाब कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के उकला जमा होकर शरीयत के किसी मसले पर इश्काल करें तो ये बंदा दो मिनट में उनको लाजवाब कर सकता है। फिर फरमाया मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, उलमा की तो बड़ी शान है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, हमेशा अपने आप को तालिब इल्म कहा और समझा। तो ये जब तलब पैदा होती है इल्म की तो फिर वो एक ए बिरादर बेनिहायत दरगहेस्त गरचे अर्चे बरवे मीरसी बरवे मएस्त, मेरे भाई ये ऐसी बे इंतला मुतनाही दरगाह है कि जहाँ पर भी पहुँचो तो वहाँ पर खड़े ना हो जाओ बल्कि आगे बढ़ो। तो ये चाहे आमी आदमी हो चाहे आलिम हो चाहे पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, उसके दिल में ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरे इल्म में इजाफा हो। और मसलन एक तो बहरहाल जो बाकायदा दर्शन दामी वगैरह पढ़ते हैं उनके दिल में भी होनी चाहिए, और एक आम आदमी के अंदर भी ये होनी चाहिए। एक तो ये कि ये जितने फ़राइज़ वाजिबात हैं इनके बारे में उसको पता हो, फिर ये कि ये जो जितना इल्म है दरहकीकत इल्म की हकीकत आती है सोहबत से, सिर्फ जान लेने से काम नहीं चलता बल्कि सोहबत से आती है। वो सोहबत चाहे इस तरह हो कि भाई बुज़ुर्गों के पास आदमी रहे, उनके साथ उनकी बातें सुने, उनका तरीक़ा देखे, उनके रवैये से के ऊपर नज़र रखे, फिर उसकी नकल उतारे। इसी तरह बुज़ुर्गों के हालात पढ़ना, सवानह पढ़ना, उनके मलफूजात पढ़ना, इससे बहुत बड़ा इल्म हासिल होता है। जो इल्म आपको किताब में नहीं, किताब से भी नहीं मिलेगा, यानी जो ख़ास किसी इल्म की किताब है उसमें से नहीं, उसमें नहीं मिलेगा, तो वो बुज़ुर्गों के हालात में मिलेगा। सीरत तय्यबा, अब आप देखो सर, इस वक्त चूंकि जो और हजरात भी सुन रहे होंगे कि आदमी ज़रा गरीबान में मुंह डाल के देखे कि आया उसने पूरी सूरत तय्यबा पढ़ी है, यानी नबी करीम सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, विलादत से लेकर वफात तक जो 23 साल ज़िंदगी है वो पूरी तरह पढ़कर अपने दिल में महफूज की है। मक्की ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह गुजरी थी, सहाबा किस तरह मुसलमान हुए थे, हिजरत कैसे फरमाई थी, जंगें कैसे लड़ी थी, आखिरकार अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा कैसे फतह फरमाया था, सारी तफसीलात पूरी अव्वल से लेकर आखिर तक कितने मुसलमानों ने पढ़ी होंगी। लेकिन वो ध्यान नहीं है, तो नतीजा ये कि सीरत तय्यबा से बेखबर है। और इत्तिबाए सुन्नत जो दरहकीकत सीरत तय्यबा से हासिल होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक मिलती है, वो जब पढ़ी ही नहीं, उसके बारे में मालूमात ही नहीं, तो फिर कैसे वो आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सीरत को अपनाएगा, कैसे इत्तिबाए सुन्नत की फजीलत उसको हासिल होगी। बस चंद चीज़ें हैं जो आमतौर से मशहूर हो गई हैं सुन्नत की, कि भाई आदमी जो है बज़ाकता जो है उसकी मुसलमान जैसी हो, दाढ़ी हो, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। लेकिन सुन्नत सिर्फ इसमें मुनहसिर तो नहीं है, सुन्नत में तो नबी करीम सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मामलात, मुआशरत, अखलाक और अखलाक और मुआशरत और मुआमलात, बी बच्चों के साथ मामलात, घर में घर वालों के साथ मामलात, पड़ोसियों के साथ मामलात वगैरह, ये सारे बातें, सारी बातें सीरत तय्यबा के अंदर दाखिल है। कितनी कितना हिल्म था आपके अंदर, कितनी बुद्धिबारी थी, किस तरह कितना आप लोगों के साथ आपका हुस्न सुलूक था, किस तरह आप वादे की का ईफा फरमाते थे, किस तरह आप अहद की पाबंदी फरमाते थे, यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी, ये सारी बातें निगाहों से ओझल हैं, और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में उनको अपना नहीं रहे। तो कितने लोगों ने पढ़ी होगी सीरत तय्यबा, खुलफाए राशिदीन की सीरत, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये सब नबी करीम सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तर्जमान थे। इनकी ज़िंदगी दरहकीकत तशरीह है सीरत तय्यबा की। उनके हालात कितने बड़े, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, हज़रत फारूक़ आज़म के, हज़रत उस्मान गनी के। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी को पता है कि इन हजरात के की ज़िंदगी किस तरह गुजरी, किस तरह वो हुकूमत करते थे, किस तरह वो एक दूसरे के साथ मामलात करते थे। ये सारा मैदान है इल्म का जो खुला हुआ है, اور الحمد للہ علماء کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ ان سب چیزوں کا کے لیے کتابیں لکھ کر اپنی زندگیاں کھپا کر یہ سب کچھ لکھ کے چلے گئے ہیں ہمارے آپ کے لیے. اور وہ پکی پکائی روٹی ہے ہمارے پاس, صرف اس کو کھانے کی دیر ہے. جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے اندر مشقتیں اٹھائی ہیں, تکلیفیں جھیلی ہیں, فاقے برداشت کیے ہیں, تب جا کر یہ معلومات ساری جمع ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو پکی پکائی شکل میں موجود ہے, بس صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کھا لیں, اٹھا کے نوارا بنا کے کھا لیں. تو وہی نہیں ہو رہا, اور سارے دھندے ہیں اور سارے کام ہیں اور سارے مشغولیات ہیں, تجارت بھی ہے, زراعت بھی ہے, ملازمت بھی ہے, سبھی کچھ ہے, لیکن کوئی وقت اتنا نکال لے آدمی کہ اپنے علم میں اضافہ کرے, جو فرض عین ہے اس میں بھی اور جو فرض عین سے زیادہ ہے اس میں بھی, کہ آدمی کچھ وقت نکالنے میں اپنے علم کے میں اضافہ کروں گا, اس میں کوئی مطالعہ کرے سیرت کا, صحابہ کرام کی کیا حالات زندگی, بزرگان دین کے حالات زندگی. علم در حقیقت ان کی صحبت سے آتا ہے, اور جب صحبت میسر نہ ہو تو ان کے ملفوظات سے, ان کے ارشادات سے, ان کی سوانح سے حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت پالا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی کی صحبت میسر ہو اللہ والے کی. اگر کسی کو وہ میسر نہیں ہے تو اس کے قائم مقام ہے بزرگان دین کی سوانح اور ان کے ارشادات ملفوظات, یہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صحبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ صحبت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو ہے کہ نماز فرض ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے, لیکن پیدا نہیں ہو رہا. تو جب کسی خشوع والے کے ساتھ رہیں گے, اس کا انداز نماز دیکھیں گے, اس کے حالات کو نظر سے آئیں گے, تو وہ جو علم تھا, یعنی زبانی طور جو محض نظریاتی علم تھا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے, وہ پھر عمل کی طرف بڑھے گا. صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے. تو جب صحبت میسر نہ ہو تو بزرگان دین کے حالات اور سوانح یہ ہیں جو اس صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے واقعات ہوتے ہیں اس میں, اس واقعات سے میں ایک نور ہوتا ہے. وہ نور علم جو ہے وہ ان واقعات سے پھوٹتا ہے, اور پھوٹ کر پھر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. وہاں صرف نظریاتی تقریریں نہیں ہوتی ہیں ان کے سوانح میں یا ان کے ملفوظات میں, صرف ایسی نہیں ہوتی کہ بھائی ایک نظریاتی تقریریں کر لی, بلکہ اس کے اندر یہ نور ہوتا ہے, ان کے عمل کا نور ہوتا ہے, وہ منتقل ہوتا ہے انسان کے اندر, انسان کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کو آدمی بنا, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل ہمارے طلبا جو ہیں, جو درس نظامی کے میں پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے بھی ہیں, ان کو ان کا علم نہیں ہے. تو الفاظ رٹ لیے ہیں, کچھ سبق پڑھا دیا, پڑھ لیا, لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس علم کو عمل میں لانے کے لیے جو صورت, جو طریقہ ہے, وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. کس طرح ان بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ان کے حالات زندگی سے واقفیت نہیں ہے. سب نام لیتے ہیں, حضرت نانوتوی کا, حضرت گنگوئی کا, حضرت تھانوی کا, کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کے حالات زندگی اور ان کے ملفوظات. تو یہ وجہ کیا ہے کہ طلب نہیں ہے علم کی. جب ایک مرتبہ طلب لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلب خود بڑھاتی آ گیا انسان کو, وہ طلب کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, हमारे हजरत वाले साहब के उस्ताद थे हजरत माना अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुतबाहिर आलिम थे और हर चीज़ में हर इल्म फ़न के अंदर बहुत अल्लाह ताला ने मकाम बख्शा था। हजरत वाले साहब फरमाते हैं कि एक रात में उनकी वफात की खबर मशहूर हो गई देवबंद में, बीमार थे तो रात के आखिरी हिस्से में कहीं ऐसे ही वफा अफवाह हो गई कि हजरत का इंतकाल हो गया, तो लोग जो हैं दौड़े, हम भी कह रहे मैं भी दौड़ा और जाके फजर के मुतसिल फजर नमाज पढ़ी और फिर फौरन घर पर हाजिर हुए तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चहल पहल नहीं थी जैसे किसी की वफात के मौके पर हो जाती है। तो जाकर देखा तो हजरत शाह साहब जो हैं वो एक चौकी के ऊपर बैठे और अंधेरा है, यानी अभी तक झटपटा है, रोशनी नहीं है, उस वक्त बिजली का ज़माना तो था नहीं, तो हल्का सा कोई चराग जल रहा था, तो एक किताब सामने थी और यूं झुक के उसको पढ़ रहे थे। तो हज़रत वाली साहब फरमाते हैं कि हमारे साथ हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी भी थे और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने पूछा कि हज़रत आपने बहुत सारे हमारे मसाइल हल किए, एक मसला और हल कर दें। फरमाया क्या? कि ये बताइए कि एक तो हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा मसला है कि जो अभी तक आपके इल्म में नहीं आया, जिसको पढ़ने के लिए इस वक्त आप अपने नज़र झुकाए हुए हैं, और अगर आ गया है और कोई ऐसा मसला है भी तो आपके शागिर्द कहाँ मर गए हैं कि उनसे कहते कि भाई तलाश कर लो। ये जो आप अपने जान पर जुल्म कर रहे हैं कि इतने बीमार हैं, बीमारी के अंदर हर आपने किताब खोली हुई है और निगाहें झुकाई हुई हैं, तो ये इसका अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं तो उम्मत पर जुल्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो कहते हजरत ने ऐसे सर उठाया और कहने लगे भाई सच कहते हो, मगर क्या करूं, ये भी तो एक रोग है, ये भी तो एक बीमारी है कि इसके बगैर चैन नहीं आता जब तक के कोई मुताला ना कर लूं, चैन ही नहीं आता इसके बगैर। तो ये होती है तलब कि हर वक्त इंसान जो है किसी इस फिक्र में हो कि मेरे मुझे कोई ऐसी नई बात ऐसी मालूम हो जाए कि जो मेरे लिए जिंदगी में फायदा मंद हो, आखिरत के लिए फायदा मंद हो। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उनके एक शागिर्द थे, वो बीमार थे, एक शागिर्द थे वो उनका मिजाज पुरसी के लिए इयादत के लिए घर गए तो सलाम दुआ हुई, खुश खैरियत पूछी, जब इब्तदाई रस्मी गुफ्तगू हो गई तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं ज़रा ये बताओ कि हज हज के अंदर जो रमी की जाती है तो वो सवार होकर करना अफजल है या पैदल करके पैदल करना अफजल है? ये सवाल किया, फिर उन्होंने जवाब दिया, उसके ऊपर तबसरा किया, बदान होने वाली है। मुख्तसर बात यह है कि वो उन्होंने जवाब दिया और इमाम यूसुफ ने उसका सही मसला बताया, उसके बाद वहाँ से निकले, कहते हैं चंद कदम चला था कि अंदर से इत्तला आई कि इंतकाल हो गया। तो ये आखिर वो जो तलबुल इल्मी मिनल महदी लहद, तो वो उस वक्त आखिरी वक्त में भी दिमाग में वो मसला चक्कर काट रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई खुलासा ये है कि तलब इल्म ऐसी चीज़ है कि जिसको सिर्फ मदरसे में पढ़ने वालों के साथ मखसूस ना समझें कि वो पढ़ रहे हैं, वो उलूम हासिल कर रहे हैं, बस वो तालिब इल्म है। हर मुसलमान हर वक्त उसको तालिब इल्म होना चाहिए, चाहे वो आमी हो चाहे आलिम हो, ये देखें कि मेरे इल्म में क्या कमी है, اس کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہوں. مثلا مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ صحیح کرنی آتی ہے، حروف صحیح ہیں، تجوید کا خیال کر کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اگر صحیح ہے تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیا یہ فکر کبھی پیدا ہوئی کہ میں اپنے قرآن کو صحیح کر لوں کسی قاری کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے؟ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی یہ کہ مجھے جو دین کے ہمارے دین کے رہنما ہیں، جو دین کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کے حالات زندگی، ان کی سوانح، ان کے ملفوظات، یہ پڑھنے کا کوئی داعیہ دل میں پیدا ہوا؟ نہیں ہوا تو پیدا کرو، ربی زدنی علما، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. اور کم از کم اتنا تو کرے آدمی کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ تھوڑا سا وقت دین کی تعلیم، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نکالے، سیرت طیبہ پڑھے، بزرگان دین کے حالات پڑھے، ان کے سوانح پڑھے، ان کے ملفوظات پڑھے، تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو. اور علم تو حقیقت میں جیسا میں نے عرض کیا تھا، وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس صحبت کا قائم مقام ہوتا ہے ان کے حالات زندگی، ان کے ملفوظات. تو کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے آدمی، تو دل میں طلب پیدا ہو، پیدا کرے، اور یہ کام آپ دیکھو، کر کے دیکھو کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں. اس میں سب سے پہلے تو جو علم فرض عین ہے اس کو حاصل کریں، اس کے بعد پھر قرآن شریف صحیح کریں، اس کے بعد جو ہے بزرگان دین کے سیرت طیبہ اور بزرگان دین کے حالات زندگی یہ پڑھیں، ان کے مواعظ پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے رسمی طالب علمی کے زمانے میں جو ہے مجھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ میں دل نہیں لگتا تھا، اور ادھر ادھر کی اور بزرگوں کے حالات پڑھتا تھا، شیخ الہند کے، اور لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مواعظ سے کچھ ذرا اس کا جو اسلوب ہے تو وہ اس اسلوب سے ذرا انسیت پیدا نہیں ہوتی تھی. تو میرے حضرت نے، حضرت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ بھئی تم مواعظ نہیں پڑھتے. میں نے کہا حضرت پڑھتا تو ہوں، مگر پڑھ کے تھوڑے دنوں کے بعد الجھ جاتا ہوں اور اس کی وجہ سے محروم رہتا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرو، وہ یہ کہ روزانہ تم 5 منٹ نکال لو، بس 5 منٹ، اور دل لگے یا نہ لگے 5 منٹ میں بعض کا کوئی حصہ پڑھ لو، یا کچھ 5 صفحے مقرر کر لو کہ روزانہ 5 صفحے پڑھوں گا، اور اس طرح مقرر کر کے پابندی سے وہ کام کیا کرو. تو خیر میں نے حضرت کی تعمیل میں، میں نے دوپہر کو میں کچھ قیلولے کی عادت ہے تو قیلولے سے پہلے میں نے اپنے پاس حضرت کے مواعظ کا ایک سیٹ رکھ لیا، اور قیلولے سے پہلے میں نے سوچا کہ حضرت نے فرمایا کہ چاہے تم سے ایک سبق پڑھا جائے مگر پڑھو ضرور، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. شروع میں وہی بات ہوئی کہ طبیعت جو ہے وہ اس اسلوب سے مانوس نہیں تھی، تو اس واسطے ذرا تھوڑی سی دشواری بھی ہوئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ حضرت والا کے مواعظ میں میں اس ارادے سے اٹھاتا تھا کہ بھئی 5 صفحے پڑھوں گا، اور وہ جب 5 صفحے کیا، وہ 20 ہو جاتے تھے، 25 ہو جاتے تھے، پھر بھی دل چاہتا تھا اور پڑھتا رہوں. यहाँ तक कि बाद अवकात करूरे का वक्त ही निकल जाता था। तो फिर इतना उसकी एक यानी क्या कहना चाहिए, उसकी लज्जत, उसकी हलावत, उसके अंदर जो उलूम हैं उनका ध्यान इस कदर बढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैंने हज़रत के मवाइज में से शायद कोई मवाज मैंने छोड़ा ना हो जो पूरा पढ़ ना लिया हो। और चूँकि तालिबाना एक ज़ौक़ है कि वो मैं जब पढ़ता था तो उसमें चूँकि हज़रत वाला जैसे जब मसलन आयत कुरानी की तफसीर कर रहे हैं तो वो ऐसी तफसीर होती थी इल्हामी कि उनकी किताबों में नहीं मिलती, बयान कुरान में नहीं मिलती, दूसरे तवाज़ीर में नहीं मिलती। तो मैंने उसके ऊपर निशान लगा लेता था कि ये अलग इसको जमा करना चाहिए। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत मैंने ये मालिक एहसान उल्ला, इन्होंने तुमने किया ना वो तफसीर का, तो वो सारे मैंने निशान लगे हुए मैं इनको दे दिए थे, तो इन्होंने वो सारे जमा कर लिए। और वो तफासीर है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की ऐसी कि जो आपको कहीं और मिलेंगी ही नहीं, इल्हामी इल्हामी। इसी तरह अहादीस आती थी तो उसमें भी निशान लगा लेता था कि अहादीस की तफसीर फरमा रहे हैं, तो वो भी इनको दिया था, वो भी माशाल्लाह इन्होंने, और कुछ मुझसे छूट गई होंगी तो उसका इजाफा भी किया इन्होंने माशाल्लाह, अलग से वो कर दिया कि इन्होंने तखरीज भी की है उनकी, उसके अंदर जो अहादीस आती हैं उनकी तखरीज और उनकी सारी माशाल्लाह। तो गरज ये कि अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी कुछ चाशनी पैदा फरमा दी कि मैं छूटते ही नहीं थे, तो सारे बाद इस तरीके मुकम्मल हो गए। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आदमी के अंदर तलब पैदा हो जाए तो वो चाहे थोड़ा ही वक्त हो, लेकिन उस तलब के नतीजे में उस थोड़े से वक्त में अल्लाह ताला बहुत काम करा देते। मेरी बहुत सारी मुतअद्दिद तसानीफ ऐसी हैं कि जो सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना की, सिर्फ 15 मिनट, घंटा हमारा असर का गर्मियों में घंटा ख़त्म होता था तो अज़ान में और घंटा ख़त्म होने में 15 मिनट होते थे, और एक किताब मैंने उसी में लिखी, बस 15 मिनट में वो पूरी हो गई। वक्त आदमी मुतय्यन करे, उसकी पाबंदी करे, लेकिन साथ में यह है कि शुरू में अपने ऊपर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ये समझ लो। उठाया वक्त तो मुकर्रर कर लिया, किताब उठाई, दिल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो कहते हैं दिल नहीं, पढ़ूंगा, वक्त इसी काम में गुजारूंगा, जबरदस्ती। जब जबरदस्ती करोगे तो नफ्स भी ढीला पड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये राज है, इस्लाह का राज ये है कि अपने ऊपर जबरदस्ती करने की आदत डालो, ताआत की तरफ ध्यान हो नहीं लग रहा तो जबरदस्ती करके लगाओ, मासियत से बचने की हिम्मत नहीं हो रही तो अपने ऊपर जबरदस्ती करके अपने आप को बचाओ। ये अपने ऊपर जब तक जबरदस्ती इंसान न करे उस वक्त तक इस्लाह की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना
www.darsquran.com